राजयोगी बन के सीखो फूलों जैसा मुस्कुराना, राजयोगी बन के सीखो फूलों जैसा मुस्कुराना, गुण प्रभु के गुन गुनाना, सब पे खुशियां तुम लुटाना।
ओम शांति। हमारा परम सौभाग्य है जो आज के सत्र के वक्ता हम सबके आदरणीय भ्राता ब्रिज मोहन भाई जी हमारे बीच उपस्थित है। हम करतल ध्वनि से उनका स्वागत करेंगे। ब्रिज मोहन भाई जी आप ब्रह्मा कुमारीज के एडिशनल सेक्रेटरी जनरल हैं, पॉलिटिशियन सर्विस विंग के आप चेयरपर्सन हैं, ब्रह्मा कुमारीज एपेक्स कमेटी के आप मेंबर हैं, आप इस संस्था के स्पोक्स पर्सन हैं, मंथली मैगजीन प्योरिटी के आप एडिटर हैं, 1953 में कॉमर्स ग्रेजुएशन पूर्ण करने के बाद 1955 में आपने लॉ की डिग्री प्राप्त की, 1956 में आपने चार्टर्ड अकाउंटेंट की शिक्षा पूर्ण की, 1955 में आप ब्रह्म कुमारीज के संपर्क में आए और 1973 में आपने अपने जीवन को संपूर्ण रूप से ईश्वरीय सेवाओं में समर्पित किया और तब से आप इस संस्था को अविरत सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। आपने अनेक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंसेस में भाग लिया है, यूएनओ में आपने संस्था का प्रतिनिधित्व किया। आप एक बहुत ही अच्छे वक्ता, चिंतक, लेखक और मार्गदर्शक हैं। आपने अनेक आध्यात्मिक किताबें लिखी हैं। आपके जीवन में गंभीरता और हर्षित मुक्ता दोनों का बहुत ही अच्छा बैलेंस दिखाई देता है। ईश्वरीय ज्ञान को बहुत ही सहज और उदाहरण सहित आप स्पष्टीकरण करते हैं। टीवी चैनल पर आपने अनेक कार्यक्रमों में भाग लेकर ज्ञान के अनेक गुह्य रहस्यों को स्पष्ट किया है। अब भाई जी हम सबको व्यापार में स्थिरता, आध्यात्मिक दृष्टिकोण विषय पर मार्गदर्शन करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं नम्रता बहन से निवेदन करती हूँ कि आप भाई जी का फूलों से स्वागत करें। आदरणीय ब्रिजमोहन भाई जी,
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। सबसे पहले स्वागत तो आपका शायद कल हो चुका है, मैं आपको मुबारक दे रहा हूं। किस बात की मुबारक? कैसी कौन सी खास बात हो गई जो आपको आज सुबह सुबह मुबारक मिल रही है? कुछ हुआ है क्या? शायद आपको पता नहीं होगा। मुबारक इस बात की है कि आप बिजनेस पर्सन हैं। आप सोचिए कितनी बड़ी बात है कि व्यक्ति बिजनेस पर्सन हो। क्यों? बिजनेस पर्सन की इस दुनिया में अगर आप देखें कोई प्रैक्टिकली कुछ कर रहा है सिर्फ बातें नहीं कर रहा, बातों की खीर आपको नहीं खिला रहा, लेकिन प्रैक्टिकली कर रहा है तो बिजनेसमैन कर रहा है। क्यों? दुनिया में जितनी चीजें हैं, जितने साधन हैं, बहुत बहुत चीजें हैं, लेकिन वो पड़ी हैं। एक गीत होता था, फूल जंगल में खिले किसके लिए, जंगल में फूल खिल जाए पड़ा है, खिलेगा मुरझा जाएगा। तो उन सब चीजों को जहां जहां है वहां से निकालकर और उनको उपयोग में लाना है, सारी मनुष्य सृष्टि की आत्माओं के इस्तेमाल करने के लिए तैयार करना कौन करता है? क्या राजनीतिक करते हैं? क्या सोशल वर्कर करते हैं? संगीतकार करते हैं? नहीं। तो आप देखेंगे, अपने रोल को देखिए कि जिसको लोग रोटी कपड़ा मकान कहते हैं, कि प्रैक्टिकली इस दुनिया में जिंदगी चलाने के लिए जो कुछ भी चाहिए उसको कहां कहां से लाकर उसको जिसको चाहिए उसको प्रोवाइड करना, एक्चुअली प्रोवाइड करना, वो कौन करता है? बिजनेसमैन ही करता है। किसी चीज की उसकी उपयोगिता को समझकर उसे उपयोग में लाना, और फिर किसके लिए? कि दुनिया में साधारण से साधारण मनुष्य से लेकर और जिसको बहुत विशिष्ट व्यक्ति कहते हैं, उन सब की रिक्वायरमेंट्स को उनकी डिजायर्स के अनुसार, उनको जहां वो रहते हैं, जहां उनको चाहिए, चाहे हवाई जहाज में 3600 फुट ऊपर चाहिए, या समुन्द्र में चाहिए, या कश्मीर की घाटी में चाहिए, प्रोवाइड करना और उस रूप में प्रिजर्व करके प्रोवाइड करना जिसमें वो यूज कर सके, कौन करता है? बिजनेसमैन। तो आपका सारे मनुष्य आत्माओं की सेवा का समझिए या उनको सर्विस देने का पाठ है, इसलिए हम आपको मुबारक दे रहे हैं। अपने आप को भी दे लीजिए, ये जवानी जमा खर्च नहीं, एक्चुअली आप देते हैं, पानी वाले को पानी देते हैं, जिस तरह का चाहिए देते हैं, ठंडा चाहिए, सोडा वाटर चाहिए, कोका कोला चाहिए, जो भी है। अच्छा, फिर दूसरी बात, आपकी रिटायरमेंट एज कोई फिक्स नहीं है, हैं? यदि आप इतने में रिटायर हो जाएंगे, बिजनेसमैन प्राण भी निकल रहे होंगे तो अच्छी डील कर लेगा तो शांति से प्राण निकलेगा। अच्छा, और हर व्यक्ति ये चाहता है कि मैं बिजनेसमैन के घर पैदा हूं कि नहीं? क्यों? अगर राष्ट्रपति के भी पैदा हो गया तो राष्ट्रपति 5 साल बाद पूर्व राष्ट्रपति हो जाएगा, है ना? तो यानी प्रारब्ध लेकर पैदा हूं, राजा के घर होगा तो एकाद हो जाएगा, ये तो बिजनेसमैन तो बहुत हैं, हैं? बड़े बड़े फॉरेस्ट के मालिकों के लेकर छोटे से छोटा टिम्बर मर्चेंट जिसको दातुन बेचने वाला कहते हैं, सब बिजनेसमैन है। इसलिए अनुभव, बिजनेसमैन का बच्चा तो अनुभव लेकर ही पैदा होता है ही बिजनेसमैन के घर आ रहा। एक स्पेक्ट्रिकल एनको की दुकान थी, तो वो भाई साहब का भोजन का टाइम था, तो उनका बच्चा 8वीं में पढ़ता था, वो भी आ जाता था मदद करने के, पिताजी भोजन कर ले, मैं दुकान संभाल लूंगा। एक कस्टमर आ गया, पिताजी लंच पर के पीछे कर रहे थे, बड़ी भारी कार लेकर आया, बच्चे ने देख लिया, गॉगल चाहिए, तो उसने कहा 5000 रुपीज। फिर देखा कि कस्टमर कुछ इंप्रेस नहीं हुआ, कहता पर ग्लास। फिर भी कस्टमर इंप्रेस नहीं हुआ, कहता फ्रेम बिल भी एक्स्ट्रा। अच्छा जी, 25,000 रुपया उससे ले लिया। पिताजी बड़े खुश। तो इसलिए हर व्यक्ति पैदा, सिर्फ पैदा होना नहीं, शादी वगैरह करना भी बिजनेसमैन के घर ही चाहता है। किसी ने अडॉप्ट होना हो वो भी सोचता है मुझे बिजनेसमैन अडॉप्ट कर ले। तो आप कितने खुशकिस्मत और मुबारक के पात्र हो। और आपका होल्ड इतना है कि दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है आपके लिए हो रहा है। मान लो कोई कंपनी मेडिकल रिसर्च कर रही है, नई नई दवाइयां तैयार कर रही है, तो पेशेंट को तो बाद में काम आएगी, पहला फायदा किसको होगा? बिजनेसमैन को। तो इसलिए दुनिया में जो कुछ हो रहा है वो बिजनेसमैन उसमें जरूर इन्वॉल्व है। और यहां तक अब तो हो गया है कि हर एक व्यक्ति किसी भी प्रोफेशन का हो वो बिजनेसमैन ही बनना चाहता है। आज पॉलिटिक्स क्या हो गया है? नाम उसका पॉलिटिक्स है, क्या हो गया? एजुकेशन क्या हो गया? बिजनेस। तो इसलिए भगवान भी सोचता है, पुजारी सोचता है मंदिर में कोई बिजनेसमैन आए, कोई दुकान चले। धर्म भी क्या हो गया? एवरीथिंग हैज बिकम बिजनेस। तो इसलिए आपको कितना खुश होना चाहिए, आप तो सर्वव्यापी हो गए। नाम किसी का कुछ भी हो है वो बिजनेसमैन। तो इसलिए हम आपको मुबारक दे रहे हैं। कितने आप खुशकिस्मत हैं, कितने रिसोर्सफुल हैं। किसी को कोई चंदा चाहिए, फंड चाहिए, हैं? किसके पास जाता है? दूसरे के पास जाएगा, वो कहेगा मुझे ही दे जा। तो बिजनेस, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड हो या कोई फंड हो, कुछ भी हो, कहीं आपदा आ जाए, विपदा आ जाए, तो सीधा बिजनेसमैन के पास जाएगा। अगर कोई नया नया प्राइम मिनिस्टर भी बन जाए और उसको 4 क्विंटल फ्लावर पीटल चाहिए हो कि एयरपोर्ट से उसने जाना बरसाए जाए, तो किसको लोग अप्रोच करते हैं? बिजनेसमैन कहते हैं जी हम आपकी सेवा के लिए हाजिर हैं। किसी को कुछ स्पॉन्सर कराना हो, कुछ करना हो, अच्छा काम करना हो, बिजनेसमैन तो है कि नहीं? आप मुबारक के पात्र। तो अपनी अच्छी तरह से ताली बजाइए कि भगवान ने आपको वो बनाया है जो सब बनना चाहते हैं। परमात्मा ने आपको वो बनाया है जो सब बनना चाहते हैं। अच्छा, अब मुझे टॉपिक दिया गया स्टेबिलिटी इन बिजनेस, यानी बिजनेस जहां वहीं रुका रहे हैं। पहले तो मैं हैरान हुआ कि भाई ये क्या टॉपिक हुआ। बिजनेसमैन बड़ा दूर की सोचने वाला, रिस्क लेने वाला है, वो तो बहुत डायनेमिक होता है, और उसको को स्टेबिलिटी खड़ा रहे वहीं इन बिजनेस, और उसके लिए भी स्पिरिचुअल अप्रोच बताइए। तो हमने सोचा भी इसका कुछ और मतलब होगा, जरूर गहरा मतलब होगा कुछ खास, नहीं तो ऐसे कैसे हो सकता। कहते हैं बिजनेसमैन जो होते हैं उनके घर में लक्ष्मी तो होती ही होती है, लेकिन वो चाहते हैं सरस्वती भी हो जाए। तो हर बिजनेसमैन की इच्छा रहती है कि हमारी संतान ज्यादा से ज्यादा एजुकेटेड हो, है ना? तो ये कोशिश करते हैं कि बच्चों को बढ़िया से बढ़िया स्कूल में पढ़ाएं, दे कैन अफोर्ड। बिजनेसमैनों से तो सरकार भी जेलसी करती है। आज किसी बिजनेसमैन को रेलवे चला दे, वो कहेगा मैं आधी टिकट पे चला दूंगा जितना तुम लेते हो। दुनिया में कोई काम, गवर्नमेंट भी बिजनेसमैन बनने की कोशिश कर रही है, पीएसयू खोल रही है, ये है वो है। तो एक व्यक्ति ने अपने बच्चे को बड़े अच्छे स्कूल में डाला तो उसका रिजल्ट आना था। तो माता जी घर में थे, रिजल्ट आया, पूछा कितने परसेंट है? बोला जी 99%। अब बिजनेसमैन के बच्चे के 99% मार्क्स आ जाए तो बड़ी चीज है। उसने कहा शाबाश बेटा, तेरे को अभी हलवा खिलाती हूं। और आपको पता है देसी घी यूज करते हैं, वो भी असली। हलवा बनने लगा तो खुशबू फैल गई। बाहर से पिताजी घर आए, दुकान बंद करके, तो दूर से गेट पर ही देखा कुछ खास बात है, हलवा बन रहा। आए, बोले क्या बात है? उसने कहा हमारा ये होवनहार बरखुरदार कुलदीप जो है 99% मासला, बुलाओ उसको। आया तो पिताजी ने इधर भी कांटा मारा, उधर भी मारा, पीटना शुरू कर दिया। माताजी हैरान, ये क्या? बोले मैं रोज 300, एक 100 का 300 बनाता हूं और ये मूल भी गवाया, पीटा उसको। अब उस बिजनेसमैन को आप कहें कि जी नहीं अपना स्टेबिलिटी। फिर मैंने सोचा इसका कोई खास मतलब यही होगा कि जो कुछ बिजनेसमैन इकट्ठा करता है उसको कुछ ऐसी जगह जमा करे जहां की वो सेफ रहे और किसी को पता भी ना लगे, कोई लूट ना सके। तो मेरे को स्विस बैंक का ख्याल आया कि भाई बिजनेसमैन आजकल वो है जो जितना इन्वेस्ट कर लिया, जितना यूज कर लिया, जो बांट दिया उसके बाद भी बच जाए तो क्या करे, स्विस बैंक में सेफ है, शायद यही स्टेबिलिटी होगी। फिर मैंने सोचा स्पिरिचुअलिटी इनस्टेबिलिटी ये क्या हुआ। तो फिर मुझे ख्याल आया कि हमारे इंस्टीट्यूशन के फाउंडर भी बिजनेसमैन थे, ब्रह्मा बाबा जो दादा लेख राय थे वो डायमंड मर्चेंट थे, तो भगवान ने भी कुछ सोच के ही बिजनेसमैन को चुना होगा, है ना। तो कहते हैं बिजनेसमैन का बच्चा भी तो अगर गिरता है तो कुछ सोच के गिरता है, नीचे 100 का नोट पड़ा होगा तो गिरेगा। अच्छा, तो कोई खास बात है, मैंने सोचा ये ब्रह्मा बाबा डायमंड मर्चेंट बिजनेसमैन वो स्पिरिचुअलिटी में आ गए तो उनको कोई जरूर ऐसी स्टेबिलिटी मिली होगी। तो फिर मैंने सोचा दुनिया में जितने भी बिजनेसमैन हैं उनका ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कौन है, भगवान, सबसे बड़ा बिजनेसमैन, ठीक है, गरीबों को दान कर देता है, खुले दिल से करता है, लोन माफ कर देता है, किसी कोई मर्डर भी करे है तो हे भगवान क्षमा कर दे, और राष्ट्रपति को भी पावर मिल गई है कि खूनी को भी माफ कर दो, वहीं से कॉपी हुआ। तो सबसे बड़ा बिजनेसमैन तो गॉड होगा, तो उसने बहुत अच्छी स्टेबिलिटी भी सिखाई होगी, सेफ्टी भी सिखाई होगी, सिक्योरिटी भी सिखाई होगी। तो वास्तवता यही है कि बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन हो जाए तो कभी कभी दिमाग असर आ जाता है। कहते हैं कि लक्ष्मी जी के पास नारद जी गए, एक्चुअली नारद जी घूम रहे थे बगीचे में, सैर कर रहे थे, तो कहीं नारद जी के यहां मक्खी बैठ गई, तो उन्होंने ऐसे किया तो लक्ष्मी ने सोचा मुझे नमस्कार किया है नारद जी ने। सरस्वती भी थी उधर घूम रही थी, उसने कहा नहीं मुझे किया है, तो कहा चलो पूछ लेते हैं। तो लक्ष्मी गई खुश होकर कि आपने मुझे सलाम किया होगा, उसने कहा मैं आपको क्यों सलाम करूंगा, आप जिसके पास आती हो वो पागल हो जाता है और जिससे जाती हो वो भी पागल हो जाता है। अच्छा, खैर सरस्वती से पूछा तुमने किया, उसने कहा मुझे क्या, मैं क्यों करूंगा, क्यों, तुम तो घटना होने के बाद आती हो, जैसे बॉम्बे की पुलिस आती है, अकल बाद में आती है, काम घटना घट जाती है। तो फिर लक्ष्मी ने जैसे कहा अप एंड डाउन, तो वास्तव में यहां स्टेबिलिटी की जरूरत है। कहते हैं कि एक व्यक्ति का छोटी सी दुकान थी, उसने लॉटरी निकाली तो उसकी 5 करोड़ की लॉटरी निकले आई। आजकल लॉटरी थोड़ा स्टेक से कोई खरीदता ही नहीं, करोड़ों तक चली गई। अब लॉटरी वाले ने सोचा कि भाई ये तो बेचारा छोटा सा साइकिल का पंचर लगाने वाला, इसको 5 करोड़ कहेंगे ये तो पागल हो जाएगा। तो उन्होंने अपने सीनियर ऑफिसर को भेजा कि धीरे धीरे इसको तैयार करो ताकि ये उसको अमाउंट को लेने के लायक रहे और जिंदा रहे। तो उसने आके लंबी स्टोरी उसने कहना शुरू किया, रोज का कितना कमाते हो जी, 200 रुपया, अगर तुमको 500 मिल जाए वो तो बड़ा खुश हो गया, फिर क्या करोगे, फिर उसने कहा अगर ऐसे बढ़ाता गया 1000 2000, वो बेचारे का खून तेज होता गया, तो ये करूंगा वो करूंगा, करते 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 वो 2 करोड़ तक पहुंच गया। अब उसके बाद तो उसका दिमाग में कुछ आए ही ना, तो उसने ऑफिसर को कहा आधे तुझे दे दूंगा, उसका हार्ट फेल हो गया। तो कहने का भाव ये स्टेबिलिटी का शायद ये मतलब होगा कि भाई टर्बुलेंस में, अप एंड डाउन में, उतार चढ़ाव में बिजनेसमैन का दिल इतना तो पक्का होना चाहिए कि उसको क्रॉस कर जाए। बिजनेसमैन तो होते ही हैं, हर तरह से अपने आप को स्टेबल रखते हैं, आपको पता ही है। पहले क्या होता था, बड़ा भाई कांग्रेस का मेंबर बन जाएगा, छोटा भाई शिवसेना का बन जाएगा, जो जीत गई कंपनी तो चलनी है। आजकल एक ही सब पार्टियों को दे देता है डोनेशन, कोई भी बन जाए वो कहेगा मेरे ही हैं, तो बिजनेसमैन से कौन जीत सकता है। तो फिर भी हर बिजनेसमैन सोचता है कि मैं इतना मेरे पास आ रहा है फॉर्च्यून भगवान की दया से। बिजनेसमैन का मतलब ही होता है फॉर्च्यूनेट, और आपको पता है फॉर्च्यून एक मैगजीन भी निकलता है जिसमें सबसे बड़े धनवानों की लिस्ट होती है। तो इतना हो जाए अगर क्या करें, तो कोई ऐसी जगह होनी चाहिए जो स्विस बैंक से भी ज्यादा सेफ हो। और फिर बड़ी बात यह है कि सारे कुछ ये करने के फल क्या हमें मिलता है। आप जो कुछ भी करते हैं, अरबपति हो जाए, सारे हिंदुस्तान में आपकी ब्रांचेज हो जाए, फल क्या चाहिए आपको? आपको चाहिए उससे खुशी, ठीक है, या शांति? तो शांति के लिए भी लोग कई प्रकार के प्रयत्न करते हैं। एक न्यू दिल्ली स्टेशन के बाहर एक बच्चा रेड़ी पर ऑरेंजेस बेचता था, तो एक फॉरेनर आया, उसने कहा मुझे ऑरेंज लेने हैं। एक घंटा गाड़ी खड़ी होनी थी, तो किसी ने कहा स्टेशन पर मत लो, बाहर जाओ, अच्छे अच्छे मिल जाएंगे। वो गया तो देखा 11 बजे सुबह के थे, अभी तो खैर 12 बज गए। तो नॉर्मली जैसे होता है बच्चा थोड़ा डोस ऊंग रहा था ऐसे, यहां तो मुझे उम्मीद है बिजनेसमैन तो नहीं ऊंगते होंगे। अच्छा, तो उसने कहा ये बच्चा और कुछ संतरे खरीदे, फिर बोला इंडियन लोग कैसे हैं, 11 बजे ऊंग रहा सो रहा, थोड़ा इसको शिक्षा दूं। उसने कहे बॉय अलर्ट होके को नहीं बैठता। उसने कहा जी क्या होगा, शाम तक मेरे सारी रेड़ी के संतरे बिक जाते हैं, रोज ही बिक जाते हैं, मैं मुझे अलर्ट होने की क्या जरूरत है, तुम समझता नहीं, ज्यादा संतरे बेचेगा क्या होगा, पीछे की दुकान खरीदेगा अभी तेरे ऊपर बारिश आती है, कहानी लंबी है क्या होगा। करता गया, तू नागपुर में ऑरेंजेस के बगीचे खरीदेगा, स्क्वैश बनाएगा, मेरे देश को एक्सपोर्ट करेगा, तेरे पास बड़ा बंगला हो जाएगा, जैसा होता है। कहा फिर क्या होगा, कहता तू चैन की नींद सोएगा, कहता वो तो मैं अभी सो रहा हूं। हाँ जी, तो इसलिए वास्तविक तौर पे आप देखें कि लंबा चक्कर तो हम कर ही रहे हैं, लंबा चक्कर जरूरी भी होता है। सामने घर में बारात जानी हो तो घोड़े को घुमा के ले जाते हैं ना थोड़ा, कि भाई पहुंचेगा ऐसे। तो अल्टीमेटली आप देखेंगे कि एक खतरा हर एक बिजनेसमैन को रहता है, उसको कोई अवॉइड नहीं कर सकता। अब वो खतरा ये है कि आखिर मेरा शरीर छूटेगा फिर क्या होगा। तो जितना बड़ा व्यापार, जितना बड़ी फैलावट, जितना बड़ा धन, उतना दिल जोर से धड़कता है। आम व्यक्ति शरीर छोड़ने लगता है तो एक दो डॉक्टर बुला लेते हैं, अब उस बेचारे के लिए पैनल ऑफ डॉक्टर आता है, अमेरिका से भी आते हैं, बचाओ इसको। अब ये तो पता है आपको कि ये तो होना नहीं, तो कितना उस वक्त धक्का लगता है कि भाई इतना सारा छोड़ के जा रहा हूं। ज्यादा छोड़ोगे ज्यादा स्टेक है, जिंदगी में भी फियर रहता है, आपको पता ही है, रोज का मामला है। असली जेवर हैं हीरे के लॉकर में रखे हैं, पार्टी में नकली पहन के जा रहे हैं। बहुत बड़ी कार है लेकिन गवर्नमेंट ऑफिस में छोटी लेके जाते हैं, नहीं तो लोग समझेंगे इससे कुछ ले लो, हर बात में छुपाना पड़ता बेचारे को। इसलिए मैं ज्यादा कहानियां नहीं सुनाता, लेकिन इसकी एक कहानी और आ रही है, मैं बंद करता हूं। अच्छा, आप देखिए अल्टीमेटली वो ये सोचता है चलो बाल बच्चों के लिए छोड़ दिया, वो तो मेरा मुझे क्या मिला। तो वो जो बड़े से बड़ा बिजनेसमैन है या जो स्पिरिचुअलिटी है, ये आपको एक ऐसा तरीका सिखाती है कि आप जो कुछ कमाओ और बचाना चाहो, रखना चाहो, इतना सेफ रहे, इतना सेफ रहे, ना इनकम टैक्स वाले ले सके, ना आपका पार्टनर ले सके, कोई ना ले सके। बिजनेसमैन को खतरा सिर्फ अपने पार्टनर से ही होता है। दो बिजनेसमैन क्रिकेट मैच देखने चले गए, पार्टनर से कहता, अरे भाई मैं तो सेफ की चाबी खुला ही छोड़ा है सेफ। कहता है, डर का है कि हम दोनों तो यही हैं, समझा आपने? तो कहने का भाव ये है कि बिजनेसमैन जो है, क्या हुआ, आप तो इकट्ठे तो नहीं आए ना, आपको कैसे करो? तो अब ऐसा तरीका भी होना चाहिए कि मैंने मेहनत की, मैंने कमाया, मुझे ही मिले, बाल बच्चे ले गए, उसका मुझे क्या फायदा, बाद में मेरा बुत बना देंगे और क्या करेंगे, मेरे नाम लिख देंगे बिल्डिंग पर। इसलिए यहां आती स्पिरिचुअलिटी। तो जो दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेसमैन है और जिसने एक बिजनेसमैन को ही इस संस्था का इंचार्ज बनाया, उसने हम सब, आप सबके भी फायदे की चीज है, एक शिक्षा दी कि आपके पास एक ऐसी चीज है जिसके अंदर आप डाल दोगे जो, वो कोई लूट नहीं सकता, किसी को पता नहीं लगेगा, आपके बीवी को भी पता नहीं लगेगा क्या है इसके अंदर, और वो आपके साथ रहेगा, और शरीर भी छोड़ दोगे तो साथ जाएगा, और क्या चाहिए? स्विस बैंक क्या चीज है इसके आगे? और उसमें जितना मर्जी डाल दो, तो वो है, आपको पता ही है, भारतवासी हम लकी हैं, भारत के रहने वाले हैं, और उस बात को बोलते भी हैं, यूज नहीं किया कभी, और वो है गीता के भगवान का पहला पहला सबक और सारे धर्मों का पहला पहला सबक, क्या कि तुम आत्मा हो। ठीक है, ये तो आप सब जानते ही हैं। भारत में ये अलग बात है, मरने के बाद कहते राम नाम सत, लेकिन जरा आंखें खोल के देखें, तुम आत्मा हो। और उसकी क्वालिफिकेशन क्या बताई है? आत्मा को तलवार काट नहीं सकती, आत्मा आग में जल नहीं सकती, आत्मा पानी में डूब नहीं सकती, आत्मा शाश्वत है, अजर है, अमर है, अविनाशी है, थी भी, है भी और रहेगी भी। और यही सत्य की परिभाषा है। ट्रुथ जो होता है वो होता है जो था भी, है भी और रहेगा भी। अब आप देख लो, यहां हम थोड़ा सा धोखा खा जाते हैं। सब कहते हैं कि फर्स्ट थिंग होता है सेल्फ इंटरेस्ट, स्वार्थ, उसके बगैर तो दुनिया चलती नहीं। लेकिन स्वार्थ मैंने मेरा फायदा, अगर मैं समझूं मेरा फायदा और हो जाए दूसरे का फायदा, तो मैं तो धोखे में आ गया। तो ये बात आप गौर से नोट कर लीजिए और गीता के लेसन से, अदरवाइज भी भारतीय होने के नाते नोट कर लीजिए, हमने एक बहुत बड़ी गलती की हुई है। वो क्या की हुई है कि मेरे को मैं समझा हुआ, और अगर आपने सचमुच अपनी कमाई का सुख लेना है, उसको सेफ रखना है, उसको अपने यूज में लाना है, हर वक्त आपके साथ रहे, बाकी लोग आपका साथ, आपको पता ही है, बीमार हो जाएंगे तो किसी बच्चे हॉस्पिटल में दाखिल करा देंगे, फिर तो बाहर आ जाएंगे ना, ऑपरेशन तो आपको ही कराना है। वो उस वक्त है जो उस वक्त काम आए, और वो है आत्मा। पर आजकल हमने क्या किया गलती से, सुना है, मानते भी हैं कि हमने आत्मा की ये जो बॉडी है इसको मैं कहना शुरू कर दिया, ये है मेरी, और जितनी मेरी चीजें हैं, मेरा भाई, मेरा बेटा, मेरी प्रॉपर्टी, मेरा बिजनेस, जो भी है वो मेरा है, मैं कौन है? तो हम कहते हैं ये मैं हूं। ये हमने धोखा खाया तो आपकी सारी की कमाई, मेहनत की, चाहे स्विस बैंक में हो या छुपाया हुआ हो, जो धरती के अंदर हो, गया। ये गया तो आपका गया। तो ऐसा कौन सा व्यापारी समझदार होगा जिंदगी भर मेहनत करता रहे और चाहे इसका इंश्योरेंस भी करा ले, वो तो रिश्तेदारों को मिलेगा। मेरा तो गलती हमने ये की है, ये भी मेरा है। नियरेस्ट मेरा ये है, जैसे मेरा कोट है ऐसे इससे भी नियरेस्ट मेरा ये है। आप देखिए मेरा हाथ या मैं हाथ, क्या ख्याल है? आप क्या कहते हैं, मैं हाथ या मेरा हाथ? मेरा बाजू, मेरा सिर, मेरी टांग, मेरा पैर, मेरा नाक, मेरा मेरा कहते हैं। टोटल बॉडी को कहोगे मेरा शरीर, मैं कहां है जो ये मेरा कह रहा, और सारा मेहनत जो कर रहा है वो मैं कर रहा है, इसके थ्रू कर रहा है, ये तो इसका एजेंट है, और एजेंट आपका सारा पैसा डिपॉजिट कराता जाए, कह जी आपका ही है, और कल को आपको धोखा दे जाए, छुट्टी कर जाए, ये भी छुट्टी कर जाएगा, तो आपका सारा इम्पेरिशेबल पेरिशेबल हो गया, बचाने का क्या फायदा हुआ, और इसका तो कोई भरोसा ही नहीं, कल छोड़ जाएगा। इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट चीज है कि पहली बात, किसी का जन्म बिजनेसमैन के घर होता है, किस आधार से होता है? किसी का घर जन्म झोपड़ी वाले के घर हो जाता है, हमने कभी सोचा नहीं, हमारा जहां हुआ हम उससे आगे बढ़ना शुरू कर देते, वो तो ठीक है, पहले ये सोचना चाहिए किस आधार पे हुआ। तो जरूर ऐसे तो नहीं है कि पिछले जन्म का कोई बहुत बड़ा सेठ हो, मैं नाम नहीं लेता, अगले जन्म में आके झोपड़ी वाले के घर पैदा हो जाएगा, ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि फ्यूचर इज ओनली एक्सटेंशन ऑफ प्रेजेंट। गवर्नमेंट में भी जब पे फिक्सेशन होता है तो लास्ट पे ड्रॉन होता है, हमारे धार्मिक भाषा में कहते हैं अंतमति सो गति, आपकी अंतमति है, मैं इतनी इंडस्ट्री संभाल रहा हूं और जाके आप वो थोड़ी बन जाएंगे। इसलिए ये मानना बहुत आवश्यक है, एक छोटी सी आत्मा और उसके अंदर आप इतनी स्टोरेज कर सकते हो जो आपके पास्ट क्या फ्यूचर जितने मर्जी जन्मों का कर लो। पहली शिक्षा तो वो ये देता है समझदारी की, टू बी ए रियल एंड ट्रू बिजनेसमैन, हमें अपनी सेल्फ आइडेंटिटी को रियल समझना चाहिए कि मैं हूं आत्मा, बाकी सब मेरा। तो आप हो गए, क्या हो गए? परमानेंट। वैसे लोग प्रेयर करते हैं, ओ गॉड लीड मी फ्रॉम मॉर्टेलिटी टू इमोर्टेलिटी, हे भगवान हमें मृत्यु से अमृतत्व की ओर ले चलो। भगवान मुस्कुराता कहता, तुम हो ही अमर, बॉडी से मरती है या तुम मरते हो, ये इंपॉर्टेंट बात है। फिर दूसरी बात, परमात्मा ने वेल्थ की डेफिनेशन चेंज कर दी हमारी, ताकि आपकी स्टेबिलिटी इतनी पक्की हो जाए कि आपको कोई दुनिया इधर से उधर हो जाए, आप डिस्टर्ब ना हो और आपका सेफ रहे। वो डेफिनेशन क्या है? मैं तो खुद चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, हमें पढ़ाया जाता था कि जो आए वो फायदा, जो जाए वो नुकसान, यही सिखाया जाता है। इसका उल्टा, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा उल्टा कैसे और क्यों है। अगर किसी ले मैन इलिटरेट पर्सन को, जो किसान अपने खेत में खड़ा है, आप उसको पूछो सूर्य धरती के गिर्द घूमता है या धरती सूर्य के गिर्द, तो क्या बोलेगा? कहेगा जी मैं तो अपने खेत में खड़ा हूं धरती पर, सूर्य सुबह वहां था, अभी यहां है, शाम को वहां, तो सूर्य घूमता है। लेकिन असलियत क्या है? उल्टा है ना। इसी प्रकार से ये कुछ टेढ़ी टेढ़ी चीज है, वो हमको समझनी है। रियल डेफिनेशन ऑफ सक्सेस इज, ये नहीं है फायदा हो गया तो सक्सेस, विक्ट्री हो गई तो सक्सेस, गेन हो गया तो सक्सेस, मान हो गया, नहीं। रियल डेफिनेशन ऑफ सक्सेस स्टेबिलिटी है, इक्वेनिमस इन उस्तेति और निंदा, हानि और लाभ, जय और पराजय, मान और अपमान, जो इनमें एक जैसा रहता है वो सक्सेसफुल है। तो फर्क हो गया डेफिनेशन का, क्यों? अदरवाइज क्या होगा, कहीं अच्छा हो गया तो हंसने लग गए, खराब हो गया तो रोने लग गए, तो स्टेबिलिटी कहां रही? कि ना तो सक्सेस दिमाग में चढ़ जाए, ना फेलियर आपको सुइसाइड करने की तरफ भेज दे। तो ये बात जो है, इसके लिए डेफिनेशन ऑफ वेल्थ भी भगवान ने थोड़ी चेंज कर दी। वो क्या है? डेफिनेशन ऑफ वेल्थ सिर्फ पैसा नहीं है, अगर होता तो आप देखिए कि दुनिया में जिस अनुपात में लोगों के पास पैसा बढ़ता जाता, उतनी खुशी बढ़ती जाती, पर है ऐसा नहीं है। तो डेफिनेशन ऑफ वेल्थ में कई एडिशनल चीजें आती हैं। वो क्या है, आप देखिए, आपकी हेल्थ, आपका अगर स्वास्थ्य ठीक है तो ही आपकी वेल्थ काम की है, नहीं तो नहीं। आप डायबिटिक हैं, ज्यादातर बिजनेसमैन हो जाते हैं, आप बैठे हैं कार में, आपका ड्राइवर रसगुल्ले की दुकान पे खड़ा होता, कहता है सर, और जाके रसगुल्ले खा रहा है। आप कार में बैठे हैं, आप सारी दुकान खरीद सकते हैं, पर डॉक्टर ने कह रखा है बच्चा जिंदा रहना है तो हाथ नहीं लगाना। अब कौन लकी है उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, ड्राइवर या आप? आप और ज्यादा दुखी हो रहे हैं। इसलिए ये डेफिनेशन ऑफ वेल्थ ऐसी होनी चाहिए कि आपको हर चीज की कवरेज हो, तभी तो आप स्टेबल रह सकते हैं। तो उसमें पहला तो स्वास्थ्य आता है। अगर आपको पता है बीमार व्यक्ति सारी धन देने को तैयार हो जाता है कि मेरी हेल्थ ठीक कर दो, संतान ना हो तो कहता है सारी मेरी जायदाद किस काम की, अडॉप्ट भी कर लेता है। और बीमारी, अगर आप बीमार रहे, रोगी रहे, आपका धन क्या करेगा? और फिर आयु घट जाए किसी की तो धन क्या करेगा? अच्छा, सब कुछ ठीक रहे, आपकी फैमिली में ही कोई अशांति रहे, कोई बच्चा इस तरह का पैदा हो जाए जिसको आपको संभालना पड़े, या घर में क्लेश हो जाए। इसलिए डेफिनेशन ऑफ वेल्थ क्या है, तभी उन्होंने कहा हेल्थ हो तब हैप्पीनेस होती है, वेल्थ भी मददगार है। अदरवाइज स्कूल में पढ़ाया जाता था, इफ वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, इफ हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट, एंड इफ एवरीथिंग इज लॉस्ट। आज उल्टा हो गया, आज लोगों को उस चीज का तो पता ही नहीं। आज समझते हैं पैसा गया तो सब गया, तो भगवान ने इसको कवर किया है। आपके पास कितने भी रिसोर्सेज हों, अगर उसका ठीक यूटिलाइजेशन ना हुआ तो आप रिसोर्सेज आपके लिए प्रॉब्लम बन जाएंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको डेफिनेशन ऑफ वेल्थ जो हमने सीखी है वो बताता हूं। आपका समय आपका सबसे बड़ा धन है। आपको पता है ना कि एक तो आजकल आयु वैसे ही कम है, और उसमें हमारा टाइम इधर उधर वेस्ट हो जाए फालतू चीजों में, किसी कई भी आदमी अपने को फंसा लेता है, तो समय जाता है उसका। हमने एक बार कैलकुलेट किया था कि सिर्फ 15% समय आप अपना ठीक यूज करते हैं, बाकी इधर जाने में उधर जाने में हो जाता है। समय के बाद आपका जो संकल्प है, मन में जो विचार है, वो भी आपका वेल्थ है। अगर विचार आपके गड़बड़ होते रहे इधर उधर, तो भी आपकी विचार भी तो जिंदगी है। फिर आपके पास गुण, आजकल हम अवगुणों को गुण समझ के बैठे हैं। जो गुण है, गीता के अंत में कहा गया है दो प्रकार के व्यक्ति होते हैं, एक दैवी संपदा और एक आसुरी संपदा। दैवी संपदा वो है जो गुणों के खजानों से भरपूर है, वो जिंदगी में जिस मौके पे जो चीज करनी हो तो उसको एडेप्ट कर लेता है। और स्टेबिलिटी के लिए क्या चाहिए, स्टेबिलिटी की डिक्शनरी डेफिनेशन ये है के व्यक्ति किसी भी प्रकार की चेंज को, किसी भी प्रकार की चेंज को रेजिस्ट कर सके, विदस्टैंड कर सके और एब्जॉर्ब कर सके। ये स्टेबिलिटी की डेफिनेशन डिक्शनरी की है। अब आप सोचिए कि क्या हम इस तरह के हैं, हम एक घड़ी खरीदते हैं तो कहते हैं वाटर प्रूफ हो, फायर प्रूफ हो, एंटी मैग्नेटिक हो, शॉक प्रूफ हो। हमारा दिल है शॉक प्रूफ, वाटर प्रूफ, फायर प्रूफ, तो क्या पाया? तो इसलिए हम बाहर की चीजों में तो सीख गए कि यदि गर्मी है तो एसी कर लो, सर्दी है, लेकिन अंदर की, तो हमको ये सिखाया गया है कि आपके अंदर ही ऐसी शक्ति है। जैसे आप गुस्सा करते हो तो गुस्सा करने के लिए आपको कुछ खास मेहनत करनी पड़ती है, एक थॉट भेजो गुस्से की, आप गुस्सा कर लोगे। इसी प्रकार से अगर आप पॉजिटिव, जिसको दैवी गुण कहते हैं, तो आप गुस्से का जवाब गुस्से से दोगे तो ईंट का जवाब पत्थर से दोगे, टाइम जाएगा। गर्म, जब ज्यादा ठंडे होने की जरूरत है तो आप ऐसी थॉट वेव्स भेज सकते हो जो आप बिल्कुल शांत हो जाओ। जब आप बिल्कुल ठंडे ठाकुर हो और आपको गर्म चाहिए तो आप ऐसी थॉट वेव भेज सकते हो कि आप उमंग उत्साह में आ जाओ। हम करते हैं दुनिया में लेकिन उसको प्रॉपर यूज नहीं करते। मान लीजिए एक व्यक्ति हॉस्पिटल के आईसीयू में पड़ा है, हाय हाय, डॉक्टर भी उसको ध्यान रख रहा है, उसका चार्ट बन रहा है। आप और फर्स्ट फ्लोर पर आईसीयू है, आप उसको कह दो कि आधे मिनट बाद तेरी खाट के नीचे एक टाइम बॉम्ब पड़ा है, वो फटने वाला है, क्या करेगा वो? डॉक्टर को धक्का मार के सड़क पे पहुंच जाएगा, कहां से आ गई ताकत? इसी प्रकार से हम कहते हैं कि आपके अंदर है, एक्चुअली अवर बॉडी इटसेल्फ इज ए केमिकल लेबोरेटरी, ये सारा चलता ही रहता है, लेकिन उसको हम चैनलाइज करके अंडरस्टैंड करके यूज करेंगे तो बहुत फायदा हो सकता है। तो एक एक हमारा वेल्थ समय है, संकल्प है, क्योंकि संकल्प टेढ़ा हो गया तो आप लड़ाई झगड़े में पड़ जाओगे। और तीसरा है दैवी गुण, वो क्या होते हैं आपको पता है, हमारे यह चार्ट भी लगा हुआ है, सहनशीलता, पेशेंस, धैर्यता, स्नेह, सहयोग, प्रेम, अंतर्मुखता इत्यादि इत्यादि। आज आप रोज पढ़ते हैं कि जरा सा किसी ने लाइन में लगने को कहा तो उसको शूट कर दिया, जरा सा पड़ोसी ने कार खड़ी कर दी उसको शूट कर दिया, इट इज गोइंग फॉरवर्ड। क्यों? कि वो दैवी गुणों के जैसे खुश्क हो गए हैं, जैसे सूखी घास जल्दी आग पकड़ लेती है, आज हमारा ये हाल है। तो दैवी गुण, फिर एक दिव्य शक्तियां भी होती हैं, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। आजकल हम दूसरी शक्तियां यूज करते हैं, एंगर, ईगो, ग्रीड, लेकिन वो दैवी शक्तियां, तो ये सारे धन किसी के पास हो तो फिर उसके ना परिवार में झगड़ा होगा, ना संतान खराब पैदा होगी, ना खराब निकलेगी, जीवन सुखी रहेगा। तो वो जो आर्ट है जो हमारे पूर्वजों के पास था वो हम दोबारा सीखेंगे तो हम असली बिजनेसमैन ठहरे। फिर यह है कि अपनी वेल्थ को बढ़ाया कैसे जाए, तो आप कितना भी इन्वेस्ट कर लेंगे तो सबसे बड़ा जो आपको रिटर्न दे सकता है आपकी वेल्थ का, वो कौन दे सकता है? आपकी सेवाओं का सबसे ज्यादा पे मास्टर कौन है दुनिया में? परमात्मा, या नहीं है? तुम एक पैसा दोगे वो 10 लाख देगा, ये तो कहने में आता है, 10 लाख तो उस वक्त कहा था, आप सोचिए। तो आपको ऐसे एक्शन करने की भगवान ने शक्ति दी हुई है जिससे कि आप अनगिनत कमाई कर सकते हो। किस तरह? किस अनुपात में होती है? जैसे एक के साथ 0 लगाओ तो 10 हो गया, उसके साथ एक 0 लगाओ तो 100 हो गया, करते जाओ तो आपके पदम तक पहुंच जाओगे, उसके बाद आप डिस्क्राइब ही नहीं कर सकते, अनगिनत हो गया। तो वो आपकी कमाई इतनी तेज हो सकती है, और होलिस्टिक, उसमें ये नहीं होगा सिर्फ पैसा आ जाएगा, ना टोटल, जैसे हमने आपको बताया वो वेल्थ। अच्छा, आप कहेंगे जी आप तो अजीब तरह की बातें कर रहे हैं, है ना, पर हमने आपको बुलाया किस लिए? बिजनेसमैन तो आप ऑलरेडी हो, आपको स्टेबिलिटी, सेफ्टी, ग्रोथ और परमानेंट, क्यों? आपको मान लो अल्टीमेटम हम मानते जीवन का हैप्पीनेस है, अब आपको परमानेंट हैप्पीनेस चाहिए या टेम्पररी, ये बताओ। टेम्पररी तो आपके पास है, कौन सी चाहिए? जो कहते हैं हमें परमानेंट हैप्पीनेस चाहिए, माफ करना, अपने लिए जरा हाथ उठाओ, सचमुच आपको हो सकता मिल जाए, घबराओ नहीं, मेरे लिए नहीं उठा रहे, क्योंकि उठाओगे तो लगेगा सचमुच आपकी इच्छा है, आपकी नहीं है भाई, उठा दो कोई हर्ज नहीं। अच्छा, अब आप देखिए, कनाडा में एक साइंटिफिक लेबोरेटरी में कुछ बच्चे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तो वहां एक विजिटर चला गया, वो बेचारा नॉर्मल रुस्टिक विजिटर था, उसने कहा जी बच्चों क्या कर रहे हो? बोले जी हम एक ऐसा लिक्विड तैयार कर रहे हैं जिसमें हर चीज डिजॉल्व हो जाए। ने कहा अच्छा, फिर कहता है बच्चों उसको रखोगे कहां? वो बेचारा सिंपल आदमी था, कहता है इसको रखोगे कहां, है ना, जैसे आपने माई दास का सुना हुआ, जिस चीज को हाथ लगाए सोना हो जाए, वो कहता है इसको जिसको मैं रखोगे वो भी लिक्विड बन जाएगा, इसी प्रकार से हम आपने हैप्पीनेस के लिए परमानेंट के लिए हाथ उठाया, हम आपसे सिंपल प्रश्न करते हैं, आपको परमानेंट हैप्पीनेस मान लो आज भगवान बहुत खुश है आपको दे दे, रखोगे कहां? ये बताओ, क्योंकि रखने की भी परमानेंट चीज चाहिए। अगर आपने बॉडी में रख लिया, वैसे बॉडी में रहती नहीं हैप्पीनेस, हैप्पीनेस तो मन में ही रहती है, आत्मा में ही रहती है। क्यों? अगर मुर्दा आ जाए आपको कहे हंस के आओ तो वो हैप्पीनेस थोड़ी होगी। अगर शाम तक अंकल जी भी हों और आप उनको कहें भी बच्चे डर जाएंगे इसको डिस्पोज ऑफ करे आओ, रात को आके खिड़की में खड़े हो जाएं, तो आप उसको अंकल जी तो नहीं कहोगे, कहे आओ बच्चा आओ। इसलिए एज ए मैटर ऑफ फैक्ट ये भी इम्पोर्टेंट चीज जानने की है कि दुनिया की जितनी चीजें हम चाहते हैं वो फिजिकल है ही नहीं, मटीरियल है ही नहीं। देर इज नो सच थिंग एज मटीरियल वैल्यूज, दैट इज ओनली प्राइस। आप यही देख लो, प्रेम, प्रेम कोई फिजिकल चीज है? कहीं खरीदा जा सकता है? शांति, शांति कोई फिजिकल चीज है? हैप्पीनेस, हैप्पीनेस कोई फिजिकल चीज है? क्यों है कि जिसको एक्सपीरियंस होना है वो खुद भी फिजिकली नहीं है, ये तो आत्मा की चीजें हैं। इसलिए हम आपको कह रहे हैं कि थोड़ी गहरी विद्या है। तो आप देखिए, अगर आपने सचमुच अपनी हैप्पीनेस को परमानेंट रखना है, चाहते हैं अभी भी रहे बाद में भी, आजकल LIC वाले इश्तेहार देते हैं इस जीवन में भी आपके साथ आगे भी, वो झूठा है क्योंकि आगे आपके साथ नहीं है वो, परंतु सचमुच तो आपको उसको उस कंटेनर में रखना चाहिए जो परमानेंट है, और वो है आपकी आत्मा। ठीक है, तो हमने आत्मा किसे शुरू किया था, तो अब देखना है कि आप तो बिजनेसमैन हैं, मैं आपको छोटे छोटे फार्मूले बताऊंगा, वो फार्मूले आप अभी अभी गौर करना और सोचना, और अगर उनको आपने लागू कर लिया तो सचमुच जो आप चाहते हैं, जो आप मेहनत कर रहे हैं, जो वो सब आपका अपना रहेगा, अपनी मर्जी से उसको यूज करोगे और बढ़ाओगे। अब वो फार्मूले सुन लीजिए। पहला नंबर, और ये आप अभी अभी टेस्ट भी कर सकते हैं, कोई ऐसे झूठे मूठे शू मंत्र नहीं है, अभी अभी आप टेस्ट करो, पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं ये कैसे होगा। पहला नंबर, नथिंग इन दिस वर्ल्ड एग्जिस्ट फॉर इटसेल्फ, इस दुनिया में कोई भी चीज अपने लिए नहीं बनी है। ये पहला ये समझने के लिए कि बिजनेस कैसे करना। देखिए, जिस कुर्सी पर आप बैठे हैं ये अपने लिए बनी है या आपके लिए, क्या ख्याल है? अगर ये कुर्सियां गोडाउन में पड़ी हों, इनकी कोई यूटिलिटी है? है नहीं है, आप तो बिजनेसमैन है, आप तो यूटिलिटी पैदा करते हैं। अच्छा, ये जो ट्यूब लाइट जल रही है ये किसको रोशनी दे रही है, खुद को या आपको? तो लाइट खुद के लिए तो नहीं बनी। ये माइक्रोफोन आवाज बुलंद कर रहा है, मैग्नीफाई कर रहा है, तो किसकी कर रहा है, दूसरे की या अपने लिए कर रहा है? आप एक भी चीज देख लीजिए, ये हाउस है, कमरा है, ये आपको शेल्टर दे रहा है। ये खाली कमरा अगर हो, कोई मकान 100 साल खाली रहे उसको कौन सा बंगला कहते हैं? तो इंसानों के लिए बना है। इसी तरह से बाहर आ जाइए, आम लगे हुए हैं पेड़ पर, तो आम अपने पेड़ खाता है क्या? हम पहले कहते भी हैं नदी अपना जल नहीं पीती, पेड़ अपना फल नहीं। सूर्य अगर रोशनी और गर्मी दे रहा है तो खुद को दे रहा है क्या? नहीं। अब तो आपकी संतुष्टि हो गई कि फार्मूला आपके काम का है, नथिंग इन दिस वर्ल्ड एग्जिस्ट फॉर इटसेल्फ, ये आपको जिंदगी चलाने में काम आएगा। दूसरा, इस दुनिया में आपका वो है जो आपने यूज कर लिया, यू कैन ओनली यूज थिंग्स इन द वर्ल्ड, यू कैन नॉट ओन एनीथिंग। ये बहुत बड़ा धोखा है कि मैं इस चीज का मालिक हूं। आप रजिस्ट्री करा के कोर्ट का कागज भी ले आएंगे, ये मेरा ओनरशिप डीड है, इट इज ओनली ए पीस ऑफ पेपर। आप इस शरीर के भी अब मालिक नहीं है, यूज जितना कर लिया कर लिया, आपके पास धन पड़ा है तिजोरियों में बंद पड़ा है, जितना आपने यूज कर लिया आपका, ना हम लेके आए थे खाली हाथ भी नहीं आए थे न चले। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें व्यक्ति अपनी एनर्जी को फालतू होर्डिंग में नहीं लगाता और काम करता है। यू कैन नॉट ओन एनीथिंग इन द वर्ल्ड, यू कैन ओनली यूज इट। इसका मतलब है प्रयोग करो। वैसे भी आप बिजनेस में करते हैं कि पैसा आइडल पड़ा है, क्या करना है, इन्वेस्ट कर दो। तो आपकी जो बाकी धन है, समय है, संकल्प है, आपका जीवन है, जीवन नैया है, खड़ी कर दो। नहीं, ये दूसरा है। तीसरा क्या है, वो और भी इंपॉर्टेंट है। मेयर एकमुलेशन ऑफ थिंग्स इन द वर्ल्ड इज नॉट ए सोर्स ऑफ हैप्पीनेस। कोई ये समझे कि मैं चीजें इकट्ठी कर रहा हूं, वो सिर्फ सोर्सेज हैं, रिसोर्सेज हैं, उससे हैप्पीनेस आपको नहीं मिल सकती। सेम थिंग कैन गिव यू हैप्पीनेस एंड सेम थिंग कैन गिव यू सोरो। आपका बेटा है, आपका बेटा आपका नाम रोशन भी कर सकता है और आपका नाम मिट्टी में भी मिला सकता है, तो बेटा ही। आपका जेवर है, आपके जेवर आपको ग्रेस भी दे सकते हैं और गला भी कटवा सकते हैं। म्यूजिक है, म्यूजिक, डांस, सिंगिंग खुशी की चीज है। लेकिन अगर आप बहुत उदास हैं, बहुत उदास जा रहे हैं, कुछ ट्रेजेडी हो गई है और रास्ते में लोग डांस कर रहे हैं, गा रहे हैं, म्यूजिक बजा रहे हैं, वो आपको खुश करेगा या ज्यादा उदास करेगा? क्या ख्याल है? तो इसलिए ये डबल एजेड है। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है लास्ट कि अगर ये साधन हमें सुख नहीं दे सकते फिर क्या देता है? ये सबसे इंपॉर्टेंट है। हम सुख के साधनों को ही सुख मान के उसको इकट्ठे करके खुश हो रहे हैं, विंडो शॉपिंग करके कि ये जी वाह वाह, लेकिन नहीं है। तो वो ये है, एक्यूमुलेशन ऑफ स्टॉक ऑफ योर गुड एक्शंस इज द सोर्स ऑफ योर हैप्पीनेस। अगर आपने अपने पीछे अच्छे कर्मों की पूंजी जमा की हुई है तो आपको हर चीज खुशी दे जाएगी, और नहीं की हुई तो इधर उधर से पकड़ कर नहीं हो सकता। तो ये चार बेसिक स्पिरिचुअल प्रिंसिपल्स हैं। पहला क्या था, कोई भी चीज अपने लिए नहीं बनी। दूसरा, जो भी आपका है उसको यूज करो तो आपकी, नहीं तो कोई फायदा नहीं। और तीसरा, केवल इधर उधर से इकट्ठे करते रहोगे, वो साधन है, असली सुख तब मिलेगा अगर आप उसके एंटाइटल्ड होंगे, वो है अच्छे कर्म करने से। ठीक हो गया? अच्छा, अब ये चार प्रिंसिपल्स के लिए तीन प्रैक्टिसेस हैं कि इन प्रिंसिपल्स को, ये तो हो गया प्रिंसिपल, हम जीवन में कैसे लाएं, वो आपके काम की चीज है। वो तीन प्रैक्टिसेस क्या हैं? पहली, आप ये समझ लीजिए कि जैसे कार कितनी भी बढ़िया हो, अगर ड्राइवर अनट्रेंड है तो कार आज भी गई, कल भी गई, परसों भी गई। ठीक है? इसी प्रकार से आपके पास सारे रिसोर्स हैं, लेकिन इसको यूज करने वाला कौन है? आपका मन, आपका मन। आपका मन जिस तरह का है उस तरह आपके रिसोर्सेज को, आपके टाइम को, आपके संकल्पों को, आपके रिश्तेदारों, हर चीज को घुमा लेगा। आप देख लीजिए, रोज होता है। इसलिए अब देखना है कि मेरा मन, मन तो सब चीज को कंट्रोल करता है पर मेरा मन कैसा है। तो आप अपने मन को आसानी से देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं? जैसे एक डॉक्टर एक ड्रॉप ऑफ ब्लड निकाल के सारे ब्लड के सारे इंग्रेडिएंट बता सकता है, 86 टाइप ऑफ एनालिसिस कर सकता है कि आपके ब्लड में ये है, ये नहीं है, ये गड़बड़ है, ये ठीक है, है ना? इसी प्रकार से आप अपने मन की एक थॉट को अभी भी बाहर निकाल के देख लो, उसमें क्या कुछ है, आपको पता लग जाएगा। जब माता देखती है कि पतीले में चावल पके हैं या नहीं पके हैं, तो सिर्फ एक चावल निकाल के देख लेती है क्या हाल है। तो अब आप अपनी थॉट को चेक कर लीजिए, मेरी थॉट अनबायस्ड है, न्यूट्रल है, इधर उधर झुकी हुई तो नहीं है, चाहे दबाव में चाहे लगाव में। आप देखें सर्कस में टाइट रोप वॉकर होता है, वो आप देखते रहते हैं, अरे अभी गिरा अभी गिरा, पर वो बैलेंस करके क्रॉस कर देता है, सब लोग हैरान रहते हैं। तो जिंदगी में भी टाइट रोप वॉकिंग है, आप इधर ना हो उधर ना हो। फिर मेरी थॉट में प्रेम है, शांति है, शक्ति है, विधि है, सभ्यता है, बहुत सारे इंग्रेडिएंट होते हैं, जैसे 12 मसाले की चाट होती है। अगर एक भी डिस्टर्ब हो गया तो आपका डिश खराब। सब्जी सारी अच्छी बन गई, नमक ज्यादा हो गया तो भी गया, नमक ना हो गया तो भी गया। ये जिंदगी है। तो आप देखेंगे अच्छे भले लोग, कोई लंगड़ा चल रहा है, किसी का दिमाग टेढ़ा है, कोई किसी परेशानी में है, आजकल तो हो ही गया है, जाएंगे कहें भी क्या हाल है, जैसे कोई बीमार हो, वो कहेगा तेरा क्या हाल है, उसको पता है ये भी बीमार है। फिर जवाब क्या देंगे, जो दिन कट जाए वो अच्छा है, जैसे जेल में बैठे हैं दिन काट रहे हैं, वैसे कहते भी जिंदगी है, क्योंकि हम सिर्फ बोलते हैं। जीवन एक यात्रा है। वाह, अब आपकी यात्रा की डेस्टिनेशन आएगी, आप खुश होंगे या उदास होंगे। बल्कि को पैसेंजर भी कहेगा भी तेरा स्टेशन आ रहा है, और सच जीवन की यात्रा का डेस्टिनेशन आ गया, फिर कहते मैंने उतरना ही नहीं, तो यात्रा काहे की हुई, इसीलिए गड़बड़ है। तो हम आपको बता रहे हैं कि ये जो मन है ये आपका बेसिक चीज है। अगर मन अनपोल्यूटेड है, क्लीन है, प्योर है, तो आपकी सारी चीजें ठीक तरह लगाएगा। वैसे जैसे कोई रिश्वत खा ले, तो रिश्वत खाने वाला फिर क्या करता है, वो रिश्वत के अनुसार ही काम करेगा, काम उसको अथॉरिटी है जो भी है। ऐसे ही अगर आपका मन रिश्वत खाया हुआ, रिश्वत छोड़ दो, पोल्यूटेड है, जैसे पेट्रोल पोल्यूटेड हो जाए, एडल्ट्रेटेड हो जाए, तो फिर सारी गड़बड़ होगी। इसलिए हम आपको बता रहे हैं प्रैक्टिस नंबर 1, वो ये है, स्कूल में पढ़ाया जाता था, हम कोई नई बात नहीं कर रहे, लेट बाई गॉन बी बाई गॉन, पास्ट इज पास्ट, बीती को बीती देखो। सुना हुआ ना आपने, हम ये करते हैं। कुदरत ने डेथ बनाई कि पिछले जन्म का याद ना रहे, फिर रात बनाई कि चलो जो पिछला दिन ना याद रहे, यू स्टार्ट ए न्यू डे। हम बीती को बीती करते ही नहीं, रात को जिस शशोपंज में सोते हैं सुबह वही शुरू कर देते हैं, दिन भी हमारा वही रात भी। देयरफॉर हम अपनी उलझनों को कैरी ऑन करते रहते हैं, कैरी ओवर करते रहते हैं। अगर एक सॉल्व भी हो गई तो दूसरी ले चलते हैं। अब सरकार की मिनिस्ट्रियां देख लो, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ सारा दिन बीमारियों का ख्याल करते हैं, हेल्थ का कुछ नहीं है या नहीं। ऐसे ही मिनिस्ट्री ऑफ वेल्थ फाइनेंस, उसमें लोन देना फलाना करना गरीबी का, तो उल्टा कर रहे हैं हम, उसी को मैनेज कर रहे हैं, जिंदगी में भी ऐसे कर रहे हैं। इसलिए इंग्लिश लैंग्वेज में हर सेंटेंस तब कंप्लीट होता है जब फुल स्टॉप लग जाता है, उसके बाद एक आप नया सेंटेंस शुरू करते हैं विद ए कैपिटल लेटर, पिछला कंप्लीट हो गया। आप पेट्रोल भरवाते हैं तो भी वो कहता है भाई साहब मीटर देख लो जीरो है, टैक्सी में बैठते हैं वो भी कहता है मीटर देख लो जीरो है। हम जिंदगी का मीटर कितना जीरो करते हैं, या पिछले वाले का भी आगे उसका भी हम देते रहते हैं। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू पुट ए फुल स्टॉप, टू लेट बाई गॉन बी बाई गॉन, लेट पास्ट बी पास्ट। अब इसके लिए अभ्यास चाहिए। आप पिछली बातों को सोचकर कितना अपना टाइम वेस्ट करते हैं, ये हो गया ऐसे नहीं करता तो ऐसे कर लेता, ये क्यों हो गया। और आपको पता है देर आर टू साइंस, एक होता है साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, बड़ा लंबा होता है, ये क्या हो गया। अच्छा, जब आपका वो आश्चर्य पूरा हो जाए तो फिर बिंदी रहे, उसके नीचे भी एक बिंदी होती है, आश्चर्य पूरा बिंदी लग जाएगी। और एक बहुत खतरनाक साइन होता है क्वेश्चन मार्क, बड़ा क्रुकेड सा होता है, ये क्या हुआ, व्हाट व्हाई हाउ व्हेन, जिंदगी में हम रोज करते हैं, क्या हो गया, क्यों हो गया, कैसे हो गया। जब आपका प्रश्न खत्म हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है, उसके नीचे भी एक बिंदी होती है। तो हम ये कहते हैं पहले ही बिंदी रखो, सिंपल है। तो इसमें क्या होगा, ये क्यों, क्या, कैसे, कब, ये क्यों पैदा होता है, पास्ट थॉट से। हो गया, अब वो तो हो गया, आगे का सोचो। हम उसमें उलझ जाते हैं, इसने क्यों किया, और उसका नतीजा क्या है कि हम अपनी लाइफ की पावर को डिल्यूट कर लेते हैं, डिप्लीट कर लेते हैं, और वो काम नहीं करती। आजकल हमारा स्टैंडर्ड स्टेटमेंट क्या है, आप देखिए सबका, मैं ये करना तो चाहता हूं पर मेरे से होता नहीं। है ये कि नहीं? या आपको बहने कह दें सुबह 4 बजे उठ के आना, मेडिटेशन करना, आपको अच्छा लगता है, फिर कहेंगे अरे सारा शरीर टूटा पड़ा है, 5 बजे ठीक हो जाएगा। अच्छा, तो अब कहने का मतलब, अच्छा फिर मैं ये करना तो नहीं चाहता था पर हो गया, मेरा कोई मतलब नहीं था आपको उल्टा बोलने का, पर हो गया। ये हमारा स्टेटमेंट है, मैं ही करना चाहता हूं अब मेरे से नहीं होता। क्यों नहीं होता? जब मैं चाहता हूं तो। इसका मतलब मेरे पास विश पावर है, विल पावर नहीं है। विल पावर होती करूंगा, जो आदमी विल कर लेता कर लेता है, विश पावर है। विश यू हैप्पी न्यू ईयर, पता नहीं अगला साल आता है कि नहीं आता, विश यू हैप्पी, वो तो कुछ नहीं है। फिर दूसरे के लिए हम क्या कहते हैं, उसको ये करना चाहिए, वो क्यों नहीं करता, अपने लिए चाहता हूं होता नहीं, उसको क्यों नहीं करता, और उसको नहीं करना चाहिए उसने क्यों किया। ये हमारी स्थिति है, इसको ठीक करने के लिए अपनी विल पावर को बढ़ाना है। उसका एक ही तरीका, विल पावर मन में होती है तो मन में फालतू की थकाने वाली चीजें नहीं रखनी। आजकल एक सिंड्रम है जिसको कहा जाता है TAT, TAT का मतलब होता है टायर्ड ऑल द टाइम। घर से नाश्ता करके जाएंगे, ऑफिस जाते चाय पीने जाएंगे, थक गए जी, पहले सोचते रहेंगे करेंगे, जब करने का वक्त थक गए जी। व्हाई? क्योंकि हमने उसको डिसंगेज करना ही नहीं सीखा, जीरो लगाना नहीं सीखा। नंबर टू, ये पहली प्रैक्टिस है, आप अभ्यास करो कि जो पास्ट की थॉट है मुझे उसको खत्म कर देना, कोई फायदा नहीं, फुल स्टॉप लगा, हो गया। दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप बिजनेसमैन के लिए तो अति इंपॉर्टेंट है, और वो क्या है जिसको हम कहते हैं टू गिव अप्रोच। जिंदगी में देने की भावना रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नहीं समझना देने से घाटा पड़ेगा, देने की भावना रखेंगे तो आप देवता, और लेने की भावना रखेंगे तो नाम देवता, और देवता हमारे पूर्वज थे, हम ही लोग थे पिछले जन्मों में। जब देवता थे कभी लेने की भावना नहीं रखी और भरपूर रहते थे। हमारी मूर्तियों को भी लोग आके बिना मांगे चढ़ावा चढ़ा जाते हैं, और अब देवता हैं तो खाली क्यों? पहले जैसे मैंने आपको बताया, एवरीथिंग इन द वर्ल्ड इज गिविंग, नथिंग एग्जिस्ट फॉर इटसेल्फ का मतलब क्या है कि देती है, तो देने के बदले में उसको मिलता है। कोई हरा पेड़ नहीं काटता फलदार के फल दे रहा है, हाँ, कोई मूर्ख होगा जो मुर्गी को काट देगा कि इसके सारे अंडे निकाल लूं, हैं? इसलिए अब देखिए, जब हम टू गेट अप्रोच रखते हैं, कुछ ले लूं, तो लेना देना तो होता ही, आप लेंगे तो कुछ देंगे, वो भी देगा तो कुछ लेगा। लेकिन जैसे हम कहते हैं गिव रिस्पेक्ट टू गेट रिस्पेक्ट, कहते हैं ना पहले गिव, ये तो नहीं कहते लेट हिम गिव रिस्पेक्ट देन आई विल रिटर्न, झगड़ा पड़ जाएगा। गिव लव टू गेट लव, आप खड़े हो जाओ जी, कोई मेरे को प्यार कर दिया, नहीं आप करोगे आपको जवाब मिलेगा, आप प्यार करोगे लपड़ थोड़ी मारेगा, इज्जत दोगे तो तंग थोड़ी करेगा। देयरफॉर दूसरी बात क्या है कि आपको अगर कंटेंटेड रहना है जिंदगी में, कंटेंटेड, संतोष, संतुष्ट, वैसे हम संतोषी माँ के गीत गाते हैं, जय जय संतोषी माँ, वो तो हमारा सिंबल है, अन्नपूर्णा माँ, दुर्गा माँ, लक्ष्मी माँ, नहीं, संतुष्ट रहना है नाउ एंड हियर। अगर आप आज ये फैसला कर लें यहां बैठे कि मैंने जिंदगी में सपने में भी लेने का नहीं सोचना, आप अभी संतुष्ट हैं, सदा संतुष्ट रहेंगे, आपको मिलेगा, बहुत ज्यादा मिलेगा, लेकिन लेने की भावना नहीं रखनी। ये हमने ब्रह्मा कुमारी में सीखा है। ब्रह्मा कुमारी कैसे चलती है? देने की भावना रखते हैं, बस आपे चलती है, आप भी करके देख लो और आपकी खुशी रहेगी। लेने की भावना में ये होता है कि थोड़ा सा मैं दूं, कम लूं ज्यादा, यही होता है ना। आप व्यापार करते हैं तो कहते हैं भाई प्रॉफिट रख लो। आजकल सारा झगड़ा यही है, दूं कम लूं ज्यादा। बिजनेसमैन तो बेचारा बहुत एडजस्ट करता है, गवर्नमेंट कहती है किसान को भी ज्यादा पैसा दो और कीमत भी कम रखो, वो तो अब्जॉर्व, हाँ जी ऐसे ही करेंगे। लेकिन हर व्यक्ति, लेबरर चाहता है पैसा ज्यादा ले लूं, काम कम करूं, मालिक चाहता है पैसा कम दूं, काम, सारा झगड़ा क्यों? टू गेट अप्रोच है। और टू गिव अप्रोच में क्या होता है कि ज्यादा दूं क्योंकि ज्यादा मिलेगा, तो आपका एटीट्यूड ही बदल जाएगा। तो मेन बात यह है, ग्रीड इज एन एनिमी ऑफ कंटेंटमेंट। ग्रीड, नॉर्मल लाइफ रहना, नॉर्मल बिजनेस, वो सब ठीक है, अगर ग्रीड उसमें घुस गया तो यू विल नेवर बी कंटेंटेड। आप अरबपति बन जाओ, खरबपति बन जाओ, ग्रीड है। और आपको पता है, रोज पेपर्स में आता है कि इंडिया का स्पोर्ट्समैन कोरिया में शॉपलिफ्टिंग करता पकड़ा गया, बिलियनेयर्स वहां चुराती पर, ग्रीड है, इससे डिजीज। एंड व्हाट यू गेट आउट ऑफ दैट इज नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। जैसे कोई आदमी मोटा हो जाए तो 40 किलो वजन कुली की तरह हर वक्त लेके फिरता है। वैसे किसी को 40 किलो उठा ले, कहेगा मैं कुली थोड़ी हूं, ये बच्चा उठा ले, मैं नहीं उठाता। अब 40 किलो हर वक्त उठा के, एवरीबडी हैज बिकम टूडे डाइट कॉन्शियस, हेल्थ कॉन्शियस। इसी प्रकार से ये जो बाहर वाली है, ये भी तो बोझ है, आप संभालते फिरो। कहते हैं ना, फिलीपींस की जो फर्स्ट लेडी थी अमाल्डा, उसके पता नहीं कितने हजार जूतों के जोड़े थे। अब सोचो उसको चुनने में कितना टाइम लगता होगा, ये पहनू नहीं, ये फिर ये पहनू, तो दिमाग तो खराब होता है। इसलिए हैव ए टू गिव अप्रोच इन लाइफ। आपको ग्रेस मिलेगा, ऑनर मिलेगा, रिस्पेक्ट मिलेगा, जॉय मिलेगा और ज्यादा मिलेगा, ये करके। ये दूसरी प्रैक्टिस है। और तीसरी, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एंड लास्ट, क्योंकि आप थक गए होंगे, अच्छा, क्योंकि बोलने वाला तो थकता नहीं, उसका क्या जाता हो तो दे रहा है, टू गिव अप्रोच दूसरे का क्या होगा। तो इसलिए लास्ट, एक मिनट ताली रोक लो फिर बजाना, कि आप इसलिए बजाते कि जान छूट गई और फिर मतलब नहीं होता। अच्छा, लास्ट तो वो ये है कि आखिरकार जो कुछ भी हम करते हैं, सबका नेट रिजल्ट कहां रजिस्टर होता है, चाहे वो गम है या खुशी है या मायूसी है या कुछ भी है, वो आपके मन में रजिस्टर होता है। मान लो आपका बहुत अच्छा फायदा हो गया, कहां रजिस्टर्ड है? मन में है ना, फायदा तो बैंक में गया। आपकी बाहर कार चोरी हो गई, आपको पता नहीं चोरी हुई तो आप खुश हैं, जो ही कोई कहेगा चोरी हो गई तब मन में रजिस्टर होगा। तो मन हमारा अपनी ही गलतियों से दुखी हो गया, थोड़ा जख्मी हो गया, थोड़ा कमजोर हो गया। क्यों? हम दूसरे की बुराइयां सोचते रहते हैं, इसने ये कर लिया, इसने क्यों किया, अपना नहीं सोचते, दूसरे ने गलती की तो हमें वो भी बुरा लगने लगता है, ये आदमी गलती क्यों कर रहा है, नहीं करनी चाहिए इसको, मैं ये झूठ क्यों बोल रहा है, मुझे चोर कह रहा है, ऐसी ऐसी चीजों से हमारा मन घायल हो गया। अब देखो, हम पास्ट की नहीं सोचना चाहते, दूसरों के भी नहीं सोचना चाहते और घायल है। अब घायल मन को ठीक कैसे करें, ताकि तो उसका एक फार्मूला है। जैसे आप अपने घर में पड़ोसियों के घर का कूड़ा करकट तो इकट्ठा करके नहीं लाते, अगर आप सुबह उठें एक बकेट लेकर छह घर इधर जाएं और उनका बेल बजाएं कि भाई आपका जो कूड़ा है मेरी बकेट में डाल दो, तो क्या सोचेगा इसको कुछ हो गया है, तुमने क्या करना है, मैंने अपना ड्राइंग रूम से जाना है, तो और भी सोचेगा इसको कुछ हो गया है। ये तो फिजिकल कूड़ा है। लेकिन अगर हम दूसरों की फालतू बातें पहले अंदर दाखिल करें फिर हम उसमें सोचना शुरू करें, और हम कहें हमें बुराई से बहुत नफरत है, हम तो सहन नहीं कर सकते, भाई बुराई बुरा कर रहा है वो भुगतेगा, तू उसकी बुराई को सोचकर तकलीफ में क्यों आ रहा है, करे कोई भरे कोई। अच्छा, और दुनिया का नाटक चलता नहीं। एक नाटक में आप देखेंगे, पांच मिनट है, पांच मिनट आप ठहर सकते हैं ना थोड़ा। अच्छा है, वेरी गुड। अच्छा, एक नाटक में आप सोचेंगे, आप फिल्म के एक्टरों को तो बॉम्बे से आए ज्यादा जानते हैं, किसी भी एक्टर हीरो एक्टर को कोई भी रोल दे दो बढ़िया परफॉर्म करता, डॉक्टर बना दो तो डॉक्टर से भी अच्छा डॉक्टर, पेशेंट बना दो तो पेशेंट से भी अच्छा पेशेंट, लोग पैसे देख के देखने जाते हैं। अब ये बताओ, एक्टर को जो पेमेंट मिलता है वो डॉक्टर बनने का ज्यादा और पेशेंट बनने का कम मिलता है, जेलर बनने का ज्यादा और प्रिजनर बनने का कम मिलता है, राजा बनने का ज्यादा और कुली बनने का कम मिलता है, या बराबर मिलता है, बताइए। ठीक है, अच्छा, उसको जो एप्रिसिएशन मिलता है, ताली बजती है उसकी, वो राजा की ज्यादा बनती बजती है और कुली की कम, या जैसी परफॉर्मेंस हो, तो रोल का कोई कनेक्शन नहीं। अच्छा, हम भी एक्टर हैं, वो तो तीन घंटे के, हम तो लाइफ के एक्टर हैं। अब हम क्यों सोचने लग जाते हैं मेरा रोल घटिया है, इसका रोल अच्छा है, और उस अपने रोल का ही रोना रोते रहते हैं कि हाय मेरा रोल घटिया, शायद उसका अच्छा है, वो ज्यादा खुश होगा और उसको ज्यादा पेमेंट मिल रही होगी, ऐसा नहीं है। अब आप देखिए, रामलीला चल रही हो और कोई जाके कहे रावण जी आप इतने भयानक लगते हो, हंसते हो तो बच्चे डरते हैं, हैं? आप लक्ष्मण की तरह क्यों नहीं बन जाते, भोले भाले ये शेव शूव कराओ, और मान लो रावण आपकी बात मान ले तो रामलीला चलेगी। मेन बात ये है, देयरफोर वी हैव टू टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड, कि जो कुछ है ठीक है, उसमें गड़बड़ नहीं हो सकती। अगर गड़बड़ है भी तो मेरी नजर में गड़बड़ है। आजकल हमारी खुशी देखो, पड़ोसी के घर बढ़िया कार आ गई, हम खाना खा रहे हैं, हैं? ये कार कहां से ले आया, इतनी बड़ी कार, अच्छा ये चर्चा शुरू हो जाएगी। और अगले दिन पड़ोसी के घर पुलिस आ गई, हाँ अब पता लगा कार कहां से आई थी, अब बताए हो पड़ोसी के घर रहा है, हम अप एंड डाउन हो रहे हैं, फ्लक्चुएट हो रहे हैं, तो ये कारण है। और सबसे बड़ा कारण अब मैं बता के उसका पूरा करता हूं, हम गाते हैं प्रभु जी मेरे अवगुण कितना धरो, प्रभु जी मेरे गाते हैं ना, मान लो एक दिन प्रभु जी आ जाएं और आप कह के बच्चा क्या बोल रहा है, प्रभु जी मेरे अवगुण कितना धरो, वो कहेंगे बेटा मैं तो किसी के भी नहीं धरता, अगर मैं अवगुण चित्त करने रहा तो मैं प्रभु जी काहे का हुआ, हैं? मैं ना धरे हैं ना धरूंगा ना किसी के धरता हूं, तेरे भी नहीं धरता, रिकन्फर्म कर देता हूं, कहो तो लिख के दे देता हूं, मैं तेरे अवगुण चित्त नहीं धरता, फिक्र न कर। फिर प्रभु जी कहते अच्छा तू आ ही गया तो चलो हमारी भी एक मान लो, तू भी किसी के अवगुण चित्त ना धरा कर। तो प्रभु जी ये मुझे मंजूर नहीं है, आप तो मेरे अवगुण चित्त नहीं धरना पर मैं सबके धरूंगा। अब ऐसा कॉन्ट्रैक्ट दुनिया में देखा, और हम यही कर रहे हैं। हमारा मन क्यों घायल होता है, क्यों दुखी होता है, कि हम राइट और रॉन्ग में फर्क देखकर राइट के अपने साथ जोड़ लेते हैं, रॉन्ग से नफरत करने लग जाते हैं। अगर हम ये समझे नाटक है, और नाटक में रॉन्ग राइट होता ही है, हार जीत होता ही है, अपनी जिंदगी में, तो आपके अंदर घृणा की भावना नहीं होनी चाहिए। हम भी प्रेम सब करते हैं, हम कहते हैं जी हम 99% लोगों को प्रेम करते हैं, पर एक मेरी सास है ना, भगवान इसको है ना। एक लड़के और लड़की की शादी की बात हो रही थी, तो बता रहे थे कि लड़की में ये गुण होना चाहिए, ये गुण होना चाहिए, पढ़ी लिखनी होनी चाहिए, छोटी आयु की होनी चाहिए, जो भी होता है, सुंदर होनी चाहिए, धनवान होनी चाहिए। आखिर उन्होंने लड़की से पूछा, तेरी भी कोई विश है? कहती जी मेरी सास फोटो फ्रेम में होनी चाहिए। अच्छा, अब आप देखिए, तो अगर हमने ये किया कि भाई 99% से हम प्रेम करते हैं, पर मेरा पड़ोसी है, कुलीग है या कोई भी है, इसने मेरी जिंदगी तलख, इससे मैं प्रेम कर ही नहीं सकता, तो आपका प्रेम क्या हुआ? अनकंडीशनल हुआ। अच्छा, भगवान को ले लीजिए, भगवान किसी से नफरत करता है? करता है क्या? हमारी नलायकियां देख ले तो हमको ही कहे भागो यहां से। तो अब देखो, वो प्रेम करता है, दो करता है, ऐसा नहीं कि सबसे प्रेम ही करता है, या प्रेम करता है या तरस करता है, जो खराब होता है उसे तरस करता है, ये बेचारा घृणा नहीं करता। तो आप भी प्रेम करो या तरस करो, नफरत तो नहीं करोगे ना। इसलिए प्रेम के अंदर अडल्ट्रेशन कर दिया, एक बाल्टी प्रेम में आपने एक बूंद नफरत डाल दी, एक बाल्टी अमृत में एक बूंद विष डाल दिया, तो अमृत नहीं रहेगा। इसलिए जिंदगी के लिए मैं अब लास्ट असूल आपको बता रहा हूं, जो मन को भी ठीक रखे और आपके लिए, आप कुछ भी को दुनिया में हो जाए आप खुश रहोगे। पहले हम गाते थे, जो तुझको कांटा बोए, गाते थे ना, उसको बो तू। अच्छा, मैं उसी को दूसरी भाषा में कह रहा हूं, विदाउट एक्सेप्शन, हर एक के लिए हमने अपने मन में शुभ भावना और शुभ कामना रखनी है, बस। तेरा भी भला हो, तेरा भी भला हो, तेरा भी भला हो, तेरा भी भला हो, इसको की कीमत तो नहीं लगेगी आपकी, कुछ भी नहीं। लेकिन आप देखोगे ये तीन प्रैक्टिसेस जो हैं, पास्ट इज पास्ट, टू गिव अप्रोच एंड वेल विशर ऑफ ऑल, ये आपको ऐसा धनवान बना देगी कि जो और हर प्रकार की चीजों से नहीं मिलेगा, आपको घर बैठे मिलेगा। ठीक है, ओम शांति।
करते चलो सबका भला, जीवन के जीने की ये है कला। करते चलो सबका भला, जीवन के जीने की ये है कला। करते चलो सबका भला।